आगे देखते हैं रुकू नंबर 9 को। वलकद अरसलना मूसा भी आयातीना व सुल्तान मुबीन, और यकीनन हमने ही मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी आयात और रोशन दलीलों के साथ भेजा फिरौन और उसके सरदारों की तरफ, फिर भी इन लोगों ने फिरौन के अहकाम की पैरवी की और फिरौन का कोई हुक्म दुरुस्त था ही नहीं। ने आपको क्या समझता था और अल्लाह ताला उसके लिए क्या बात कह रहे हैं। यक़दुमु क़ौमहु यौमल क़ियामा फ़अवरदहुमुन नार वबिसल विर्दुल मौरूद, वो तो क़यामत के दिन अपनी कौम का पेश रो होकर इन सब को दोज़ख में जा खड़ा करेगा, वो बहुत ही बुरा घाट है जिस पर ला खड़े किए जाएंगे। इन पर तो इस दुनिया में भी लानत चिपका दी गई और क़यामत के दिन भी बुरा इनाम है जो दिया गया। ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد, बस्तियों की ये बाज़ खबरें जिन्हें हम तेरे सामने बयान फरमा रहे हैं, इनमें से बाज़ तो मौजूद हैं और बाज़ की फसलें कट चुकी हैं। हमने इन पर कोई जुल्म नहीं किया बल्कि खुद उन्होंने ही अपने ऊपर जुल्म किया, और इन्हें इनके माबूदों ने कोई फ़ायदा न पहुँचाया जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे, जबकि तेरे परवरदिगार का हुक्म आ पहुंचा, बल्कि और इनका नुकसान ही उन्होंने बढ़ा दिया। वकज़ालिका अख़ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिया ज़ालिमा, तेरे रब की पकड़ का यही तरीका है जबकि वो बस्तियों के रहने वाले जालिमों को पकड़ता है, बेशक इसकी पकड़ दुख देने वाली और नहायत ही सख्त है, यानी अल्लाह की पकड़ बड़ी शदीद है। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए निशाने इबरत है जो क़यामत के दिन के अजाब से डरते हैं, वो दिन जिसमें सब लोग जमा किए जाएंगे और वो दिन जिसमें सब हाजिर किए जाएंगे। इसे हम जो मुलतवी करते हैं वो सिर्फ एक मुद्दत तक, जिस दिन वो आ जाएगी मजाल न होगी कि अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई बात भी कर ले। يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد, फिर इनमें कोई बदबخت होगा और कोई नेक बخت। فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق, लेकिन जो लोग बदबخت हुए वो दोजख में होंगे, वहां चीहेंगे चिल्लाएंगे। خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض, वो वहां हमेशा रहने वाले हैं जब तक कि जमीन और आसमान बरकरार रहें, सिवाय उस वक्त के जो तुम्हारा रब चाहे, यकीनन तेरा रब जो चाहे कर गुजरता है। और लेकिन वो लोग जो नेक बख्त हैं वो जन्नत में होंगे जहां वो हमेशा रहेंगे, मगर जो तेरा रब चाहे ये बे इंतहा बख्शिश है। फला तकफी मिर्यत मिम्मा याबुदुहा उलाई, इसलिए आप इन लोगों से शक और शुभे में ना रहें जिन्हें ये लोग पूज रहे हैं। इनकी पूजा तो इस तरह है जैसे इनके बाप दादाओं की इससे पहले थी, बस हमने इन सब को पूरा पूरा हिस्सा बगैर किसी कमी के देने वाले हैं। रुकू नंबर 9, इसका उन्वान क्या है? कौमों की हालत पर तबसरा। इससे पीछे कुछ अंबिया कराम का एक कौमों के हालात और उनके अजाब की बातें थी, यहाँ फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम के वाक्य को दोबारा बुनियाद बनाते हुए अल्लाह ताला ने एक तबसरा रखा। कुछ बातें जो अल्लाह ताला की सुन्नत के नाते से हमें मालूम हुई इसमें, वो क्या थी? नंबर 1 कि अल्लाह ने कौमों पर जुल्म नहीं किया, वो खुद अपने ऊपर जुल्म करते थे। दूसरी बात, जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो उनके बुतों ने उनकी कुछ काम न किया, मदद न की, बल्कि उन्होंने इनकी बर्बादी में इजाफा किया। फिर अगली बात क्या है कि जब अल्लाह किसी जालिम बस्ती को पकड़ता है तो इसकी पकड़ बड़ी सख्त होती है। फिर जब किसी की पकड़ का वक्त आता है तो फिर उसमें कमी नहीं की जाती। पकड़ के बाद भी कुछ लोग बदबخت और कुछ खुशबخت हैं। बदबخت लोग जहन्नुम में जाएंगे और जानवरों की तरह चिल्लाएंगे। यहां जो जफीर और शहीक के लफ्ज हैं, ये गधे की आवाज को कहते हैं। आपने कभी गधे की आवाज सुनी हो तो वो एक दफा आवाज अंदर खींचता है और एक बाहर खींचता है, तो एक कैफियत को जफीर और दूसरी को शहीक कहते हैं। मैं जब इस आयत को पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कोई ऑपरेशन थिएटर है, और जहां से अंदर लोगों के जख्मों को काटा फाटा जा रहा हो, या इमरजेंसी वार्ड जिसके बाहर बैठे हुए लोग अंदर से जख्मियों की चीखों की आवाज सुनते हैं। जहन्नुम भी ऐसे ही लगता है कि वहां जाके लोगों के ऊपर कभी ब्लीच डाला जा रहा है, कभी टेंचर, कभी स्पिरिट टल रहे हैं, और उनको काटा छाटा जाएगा और उनके जुबान से गधों जैसी आवाजें आएंगी। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। हमारे अमल की बातें इसमें क्या है? नंबर एक, इनफरादी और इज्तमाई गलतियों पर अल्लाह ताला से मुसलसल तौबा करने की जरूरत है। बाज़ दफ़ा हम इनफरादी गुनाहों को तो गुनाह समझ के तौबा कर लेते हैं, लेकिन इज्तमाई गुनाहों को गुनाह नहीं समझते, ये हमारी भूल होती है। दूसरी बात यह है कि इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चलने के लिए कोशिश करनी है ताकि अल्लाह के अजाबों से बच सके, और लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ हमेशा बुलाते रहना है। कुछ और मजीद तबसरा है अगले रुकू में, वो भी देखते हैं। वलकत आते ना मूसल किताब फख्तुलिफ़ी, यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, फिर इसमें इख्तलाफ किया गया। अगर पहले ही आपके रब की बात सादिर ना हुई होती तो यकीनन इनका फैसला कर दिया जाता, इन्हें तो इसमें सख्त शुबा है। यकीनन इनमें से हर एक जब इनके रूबरू जाएगा तो आपका रब इसे आप इसके आमाल का पूरा पूरा बदला देगा, बेशक वो जो कर रहे हैं इनसे वो बाखबर है। फस्तकीम कमा उमिरता वमन ताब माअका वला ततगौ, बस आप जमे रहिए जैसा कि आपको हुक्म दिया गया, और वो लोग भी जो आपके साथ तौबा कर चुके हैं, खबरदार तुम हद से ना बढ़ना। अल्लाह तुम्हारे तमाम आमाल को देखने वाला है। देखो जालिमों की तरफ हरगिज़ न झुकना, वरना तुम्हें भी दोजख की आग लग जाएगी, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई मददगार खड़ा न हो सकेगा और ना तुम मदद किए जाओगे। व अकीम सलात तरफिन नहार व ज़ुलफ़म मिनल्लैल, दिन के दोनों सिरों पर नमाज बरपा रख, और रात की सातों में भी। कौन कौन सी नमाज है सिरों पे? फजर और मगरिब, और रात में कौन सी है? ईशा और तहज्जुद। यकीनन नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये नसीहत है नसीहत पकड़ने वालों के लिए। वस्बिर फइन्नल्लाहा युदीउ अजरल मुहसिनीन, आप सब्र करते रहिए, यकीनन अल्लाह ताला नेकी करने वालों का अजर जाया नहीं करता। बस क्यों न तुम में से पहले जमाने के लोगों में से ऐसे अहले खैर लोग हुए जो जमीन में फसाद फैलाने से रोकते, सिवाय इन चंद के जिन्हें हमने इनमें से निजात दी। जालिम लोग तो इस चीज के पीछे पड़ गए जिसमें इनको आसूदगी दी गई थी, और वो गुनाहगार थे। वमा का न रब्बुकल युहलिकल कुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून, आपका रब ऐसा नहीं है कि किसी बस्ती को जुल्म से हलाक कर दे और वहां के लोग नेकोकार हों। वलौ शाअ रब्बुक लजअलन्नास उम्मतन वाहिदा, अगर आपका रब चाहता तो सब लोगों को एक ही राह पर एक गिरोह कर देता, वो तो बराबर इख्तलाफ करने वाले ही रहेंगे। बजुस इनके जिन पर आपका रब रहम फरमाए, इन्हें तो इसीलिए पैदा किया है, और आपके रब की ये बात पूरी है कि मैं जहन्नम को जिन्नों और इंसानों सबसे पुर करूंगा। रसूलों के सब अहवाल हम आपके सामने आपके दिल की तस्कीन के लिए बयान फरमा रहे हैं। आपके पास इस सूरत में भी हक पहुंच चुका है जो नसीहत और वास है, और मोमिनों के लिए भी। وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ, ईमान न लाने वालों से कह दीजिए कि तुम अपने तौर पर अमल किए जाओ, हम भी अमल में मशगूल हैं, और तुम भी इंतजार करो हम भी मुंतजर हैं। وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ वमा रब्बुक बिगाफिलिन अम्मा तामलून, जमीनों और आसमानों का इल्म गैब अल्लाह ताला ही को है, तमाम मामलात का रजू भी उसी की जानिब है, बस तुझे इसी की इबादत करनी चाहिए और इसी पर भरोसा रखना चाहिए। तुम जो कुछ करते हो इससे अल्लाह बेखबर नहीं। یہ ترکو نمبر 10، اس کا عنوان کیا ہے؟ اللہ کی پکڑ، ظلم نہیں. اس پورے رکوع کو اگر آپ دیکھیں تو پچھلی قوموں کی ہلاکت پر تبصرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف چیزیں اس میں سامنے رکھی کہ جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ قوموں پہ جو پکڑ آتی ہے وہ ان کے ہی گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بے مقصد نہیں پکڑتا. اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا. اختلاف کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً کیوں نہیں پکڑا؟ کیونکہ ان کی مہلت رکھی ہوئی تھی. پھر اس کے اندر دین قبول کرنے والوں کے لیے ایک لائحہ عمل دیا گیا. 7 نقطے تھے، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ جس کو بھی دین قبول کرنا ہے 7 کام کرنے پڑیں گے. نمبر 1، ٹھیک ٹھاک راہ راست پر ثابت قدم رہنا، استقامت لکھ لیں اس کو آپ. بندگی کی حد سے تجاوز نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے. ظالموں کی طرف جھکنا نہیں، ورنہ جہنم کی لپیٹ میں جاؤ گے. نماز قائم کرنا، نیکیاں کرنا تاکہ برائیاں دور ہو جائیں. اللہ کو یاد رکھنا ہے اور صبر کرنا ہے. جس قوم کے اندر یہ 7 کام آ جائیں گے وہ اللہ کے عذابوں سے بچ جائے گی. پھر اس کے بعد 8 باتیں کی قوموں کی تباہی کے اسباب کی وجہ پہ. کب قومیں تباہ ہوتی ہیں؟ نمبر 1، جب خیر کی بات کہنے والے تھوڑے ہو جائیں، جو لوگوں کو فساد کرنے سے روکیں. دوسری بات، ظالم لوگ جب اپنے مزوں میں مگن ہو جائیں. تیسری بات پتہ چلی کہ جب تک کسی بستی میں کوئی اصلاح کرنے والا رہتا ہے وہ بستی اللہ کے عذابوں سے بچ جاتی ہے. پھر اس میں ایک اور بات پتہ چلی کہ وہ لوگ جو نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان عذابوں سے. پھر وہ لوگ جو اختلافات سے بچیں گے ان پر اللہ کی رحمت ہوگی. اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ نے آزادی دی ہے، چاہے تو اچھی راستے کو لے لو چاہے برا لو، لیکن بہرحال برا کرنے والوں سے جہنم کو بھرے گا، جس میں کچھ جن ہوں گے کچھ انسان ہوں گے. پھر 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے قصوں کے بیان کرنے کی وجوہات رکھی. کیوں یہ قصے ہم نے سنے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سورہ آراف میں آئے، پھر سورہ یونس میں آئے، اب سورہ ہود میں آگے، تو وجہ کیا ہے؟ نمبر 1، آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے کہ اگر ویسے حالات آپ کے ساتھ بھی ہوں، کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آج ہمارے ساتھ، تو بھی انسان کو اس سے تسلی ملے. پھر دوسری بات اس سے کیا پتہ چلی؟ کہ ایمان والوں کی نصیحت کے لیے، ان کو بیدار کرنے کے لیے. جیسے کہتے ہیں نا کہ دوسرے کے حال سے نصیحت حاصل کرنا، ان قصوں کو سن کے پھر انسان جو ہے وہ ایسے کاموں کو کرنے سے خود رک جاتا ہے. پھر اسی طرح وہ لوگ جو ان کو سن کے بھی نہیں مان اپنے عمل سے رکتے، پھر وہ عذاب کے منتظر رہیں. اور آخر میں دوبارہ پھر اللہ کی بندگی کی بات ہوئی. سورت بھی ختم ہوئی، رکوع بھی ختم ہوا. ہمارے لیے عمل کی باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، صراط مستقیم پر قائم رہنا ہے. آسان ہے کہ مشکل؟ بہت آسان ہے جب رب کی بات سمجھ میں آ جائے. چیز اپنی جگہ جم جاتی ہے نا، وہ ہلتی نہیں. آپ دیکھیں کہ کسی کو آپ نے عمارت بناتے دیکھا ہو، اینٹیں جڑتی ہیں، کچا کچا اس میں مسالہ لگتا ہے. شروع میں آپ ان اینٹوں کو ہلا سکتے ہیں، جلا سکتے ہیں، ٹیڑھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، آرام سے اکھڑ جائیں گی. لیکن ایک دفعہ جب وہ جم جاتی ہیں اپنی جگہ، پھر آپ ہتھوڑے ماریں، پتھروں سے کوٹیں، وہ دیوار اپنی جگہ سے نہیں ہلتی. جس دل کے اندر دین کی حقانیت آ جاتی ہے نا، پھر کوڑوں پہ لٹائے جانے سے بھی اس کے دل سے استقامت کم نہیں ہوتی، اور پتھروں پہ چلنے سے بھی. تو اصل بات کیا ہے کہ رب کے دین کو دل میں اتارنا ہے، صرف ذہنوں سے ہوتے ہوئے کتابوں اور کاپیوں میں نہیں. پھر دوسری بات ہے کہ بندگی کی حد سے آگے نہیں بڑھنا. آگے بڑھنا کیا ہوتا ہے؟ ایگزیجریشن کر دینا، یعنی دین کو اسی حد تک، اللہ کا حق اور وہ ساری چیزوں کو رکھنا ہے جو حق ہے، اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا ہے. اور نماز قائم کرنی ہے اور اس کے بعد پھر صبر کرنا ہے۔ تو یہ تھی سورۃ ہود۔ مختلف انبیاء کرام کا ذکر تھا اس آیتوں میں۔ پورے رکوع میں آپ نے دیکھا کہ انبیاء کرام کی مختلف قسم کی صلاحیتیں اور ان کے ساتھ مختلف طرح کی باتیں تھیں۔ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا لا نفرق بین احد منہم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندہ مومن کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی نبی سے کسی کے ساتھ فرق نہیں پڑتا۔ تو اب لہٰذا تمام انبیاء کرام کا قصے سنائے جا رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ سب کا پیغام ایک تھا، سب کی دعوت کا طریقہ ایک تھا، اور عموماً ان کے ساتھ جو لوگوں کا رویہ ہوا وہ بھی سب ایک تھا۔ انبیاء کے بعد اب بھی قیامت تک ہر وہ بندہ جو دین کی طرف بلائے گا عموماً اس کو اسی قسم کے حالات جو ہیں وہ پیش ہوں گے۔ سورۃ یوسف کو شروع کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت سورۃ ہے۔ خاندانوں میں رہنا، رشتہ داریوں کے جھول، اپنوں کی محبت اور بغض، یہ سورۃ آپ کو سکھائے گی کہ اپنوں سے کیسے معاملہ کرتے ہیں۔ آج شروع کریں گے اور کل پوری ہوگی، اس لیے جو آج شروع کر رہے ہیں وہ کل شروع میں ضرور آ جائیں تاکہ ان کا شروع کا حصہ مس نہ ہو۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ یقیناً ہم نے اس کو قرآن عربی نازل فرمایا ہے کہ تم سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی یا خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا اور یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں کو بھی، جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا حضرت ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کو بھی بھرپور اپنی نعمت عطا کی تھی۔ یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ یہ تھا رکوع نمبر 11، سورہ یوسف کا پہلا رکوع۔ اس کا عنوان کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ اس رکوع میں ہم نے ابتدا میں قرآن پاک کے ناطے سے چار باتیں دیکھیں، بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ نمبر 1، یہ کتاب اپنی بات کو بیان کر سکتی ہے، یعنی کھول کے بیان کرتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ اس کتاب کی باتیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اپنا مدعا صاف بیان کرتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ عرب لوگوں میں اتر رہی تھی تو وہ سمجھیں۔ ٹرانسلیشنز تو بعد میں ہوئے نا، اس وقت کے لوگوں کو تو عربی ہی کی ضرورت تھی۔ تیسری چیز ہے کہ قرآن پاک میں واقعات اور کچھ قصے بیان ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن میں جو باتیں بتائی گئیں، بہت ساری باتوں کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اگر صرف اتنی سی بات پہ ہم بات کر کے دیکھیں تو اس سے عربی زبان کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے دل میں عربی زبان کو سیکھنے کی محبت ہونی چاہیے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ترجمہ تو ہم کر ہی لیتے ہیں، لیکن جو شیرینی اس کی عربی لفظوں میں ہے نا، وہ ترجمے میں نہیں آتی۔ دوسری بات ہے کہ عربی لفظ پڑھیں گے تو اس سے پھر اس کا ثواب بھی ہے۔ پھر عربی زبان کے ساتھ محبت جو ہے، یہ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اس ناطے سے بھی ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی، दुनिया में तो जिससे मोहब्बत होती है उसकी जुबान को सीखना चाहते हैं ताकि उससे कम्युनिकेशन हो सके। फिर जन्नत की जुबान ये है, कब्र में जो सवालात होंगे वो अरबी में होंगे। तो लिहाजा जिस तरह बाज दफा देखा गया है कि लोगों को इंग्लिश जुबान सीखने का या कुछ और नई नई जुबान स्पेनिश फ्रेंच सीखने का शौक है, तो इस वक्त मैं समझती हूँ कि अगर हम अपने दीन के असल जो असासे हैं जो अरबी जुबान में है उसको महफूज करना चाहते हैं या उससे फायदा लेना चाहते हैं तो हमें अरबी जरूर सीखनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर छोटे बच्चों पे माएँ अभी से इस चीज़ को फोकस करें तो एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह ताला वो अरबी किताबों को अपने आपके सामने रख के पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद से किस्सा शुरू होता है सूरह यूसुफ का, के अंदर हजरत यूसुफ का। आपको ये बता दूं कि सूरह यूसुफ पूरी की पूरी एक ही स्ट्रेच में नाजिल हुई थी। कुछ लोगों ने नबी सल्लम से सवाल किए थे, कुछ उसके जवाब में ये नाजिल हुई थी कि बनी इसराइल जो है वो मुल्क शाम से मिस्र कैसे आ गए। ये यहूद ने एक शोशा छोड़ा था कि जो अपने नबी से पूछो अगर ये सच्चे हैं तो इसका जवाब देंगे। तो उसके जवाब में सूरह यूसुफ नाजिल हुई कि जिसमें अब वो वजह समझ में आती है कि कैसे बनी इसराइल इधर से उधर निकले, जो आगे आगे आप देखते जाएंगे। अभी तक जो बात है वो क्या है, अल्लाह ताला ने एक ख्वाब का जिक्र फरमाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 भाई थे, दो भाई यूसुफ और बिनजमीन जो सबसे छोटे थे एक माँ से थे, और बाकी जो 11 इनके और भाई थे यानी 10 भाई जो दूसरे थे वो दूसरी माँ से थे। आप कह सकते हैं कि माँ से सौतेले और बाप से सब सगे थे। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर फितरी तौर पे कुछ खूबियां थी, मासूमियत थी, उनके चेहरे पे एक रोशनी थी सच्चाई की, कि जिसकी वजह से उनके भाइयों को ये ख्याल हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं हमारे बाप की ज्यादा तवज्जो ले लेते हैं। और ये बात अमूमन बच्चों में हो जाती है, हर बच्चा जब दूसरा बच्चा पैदा होता है तो पहला बच्चा उससे एक हसद महसूस करता है। आप देखें कि माँ को उस बच्चे के हाथ में देखेगा तो रोएगा, चिल्लाएगा, सोने के वक्त में तंग करेगा, खाने के वक्त में तंग करेगा, ये एक फितरी जज्बा है। लेकिन इनके भाइयों से गलती क्या हुई कि इस फितरी जज्बे को उन्होंने एक साजिश का रंग पहना के यूसुफ अलैहिस्सलाम के कत्ल की कोशिशें करने की बात की, जो इंशाल्लाह हम इसमें देखेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इन सब के अंदर से नुमाया किया, गो के बाद में सारे नबी बने लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन ही से इस चीज की खुशखबरी दे दी गई थी कि आप नबी बनेंगे। और ये ख्वाब जो आपने अभी सुना कि 11 सितारे सूरज और चांद जो है उनको सजदा कर रहे हैं, अब देखने में ये एक आम ख्वाब था लेकिन जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इसको सुना तो उनको लगा कि ये अनयूजल ख्वाब है। इससे ख्वाबों की हकीकत पे भी बात होती है। अमूमन लोग ख्वाबों के बारे में बड़े परेशान रहते हैं, तो याद रखिए कि ख्वाब तीन तरह के होते हैं। एक वो ख्वाब होते हैं जो हमारे नफ्स की बातें होती हैं, हद से नफ्स बोलते हैं, हदीस से नफ्स कह लें, यानी सारा दिन जो हम बातें करते हैं, सोचते हैं, कहते हैं, बात करते हैं, जो दिन में पूरा नहीं हो सकता वो ख्वाबों में कर लेते हैं। मतलब इम्तिहानों के दिनों में ख्वाब में भी अपने आप को पेपर देते हुए महसूस करते हैं, शादी की तैयारियों में हो तो रात को भी शादी का होता है, ये तो हदीस नफ्स है, इसकी तो कोई अहमियत नहीं, इस पे नहीं कोई बात सोचनी चाहिए। एक दूसरे ख्वाब होते हैं जो शैतान की तरफ से होते हैं, नाइटमेयर्स जिसको आप कहेंगे, गंदे ख्वाब आना या फिर किसी को कत्ल करते हुए देखना, कोई आपके पीछे लगा हुआ है, कुछ इस तरह की बातें, ये शैतान के डरावे होते हैं। इंसान को कभी दिन में नहीं गाफिल कर पाता और अल्लाह के उसको परेशान नहीं कर पाता तो रातों में भी करता है। इससे आपको शैतान की कमिटमेंट भी समझ में आएगी कि रात दिन काम करता है, हम क्यों थक जाते हैं। उसने जो एक काम अपने जिम्मे लिया था कि मैं इंसानों को परेशान करूंगा, दीन से दूर करूंगा, तो दिन को भी करता है, रात को भी करता है, आप सो जाते हैं वो नहीं सोता आपके लिए बेचारा। तो फिर हमें भी इसी तरह की कमिटमेंट की जरूरत है। तीसरे एक ख्वाब होते हैं जिसको बुशरा कहते हैं, वो कौन से ख्वाब हैं, जो सच्चे ख्वाब होते हैं। नबूवत के 46वें हिस्से में से एक हिस्सा है, अल्लाह के नबी सल्लम जब हिजरा यानी आपकी नबूवत से पहले आपको सच्चे ख्वाब आना शुरू हो गए थे। रात को आप जो देखते हैं वो दिन में बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाजे हो जाता। तो कभी भी कोई ख्वाब आए तो उसके मामले में हमारा रवैया क्या होना चाहिए, पहली बात यह है कि अगर कोई ख्वाब आया है तो किसी से उसका तذکرہ ना करें। हदीस में आता है कि जो ख्वाब जिक्र कर दिया जाता है वो वाकई हो जाएगा। ख्वाब परिंदे के परों में होता है, جب آپ اس کا ذکر دوسرے سے کر دیتے ہیں تو وہ خواب جو ہے پھر واقعہ ہو جاتا ہے. بہت ضرورت ہو بڑا کوئی انیوژل خواب لگے تو کسی مخلص اور دین والے سے بات کی جائے جس کو اس کا علم موجود ہو. ہر دین والے کو نہیں پتا ہوتا, کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کچھ دیا ہوتی ہیں باتیں, اور پھر تعبیر بھی قرآن کی آیتوں ہی سے نکلتی ہے اور احادیث سے نکلتی ہے. تو بہرحال اس کو بھی تعبیر بتاتے وقت بہت محتاط رہنا چاہیے. مثلا بعض دفعہ آپ خواب دیکھتے ہیں, صبح اٹھ کے آپ اپنی دوست کو سنانے لگتے ہیں, اپنی ماں کو, بہن کو, ایک دم, اچھا پھر اس کا مطلب تم مر جاؤ گی, اس میں تو تم نے مرتے ہوئے دیکھا ہے. یقین کریں کہ اتنا خوفناک عمل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بات پوری ہو جائے. کبھی بھی نہ سمجھ حاسد, جو لوگ آپ کی خوشی نہ دیکھ سکے ان سے نہیں کرنا. یا آپ نے دیکھا کہ حضرت یوسف نے کو منع کیا ان کے باپ نے کہ خواب نہ دکھانا, تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ باپ کا فرض ہے کہ آنے والے خطروں سے بچوں کو آگاہ کرے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے بھائی ان کے خلاف بات کر رہے ہیں, لیکن بھائی اس سے پہلے ہی اپنے رویوں سے یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ حسد جو تھے وہ کر چکے تھے, دکھا چکے تھے. ایک اور چیز اس سے پتہ چلتی ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے بڑے کام کرانے ہوتے ہیں ان کو بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ کچھ انیوژل قسم کی صلاحیتیں دے دیتا ہے. تو چلیے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا لیکن پھر کسی سے ذکر نہ کیا, اور جو ان کے باپ تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ بیٹا میرا ایک یعنی بہت ایک اچھا کام کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو کسی کام کے لیے چنے گا. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین, یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اذ قالوا لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا, جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں, حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں, کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا صریح غلطی میں ہیں, یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے باپ کا رخ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے, اس کے بعد تم نیک ہو جانا. اکثر لوگ یہی چاہتے ہیں, کرتے ہیں نا, کر لو گناہ بعد میں نیک ہو جائیں گے, حج کر لیں گے, نماز پڑھ لیں گے. انہوں نے بھی یہ کہا بھائی کو مار دو پھر جا کے نیک ہو جانا. ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہہ میں ڈالاؤ کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے, اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو. انہوں نے کہا ابا آخر اب یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے, ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں, کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیئے اور کھیلے, اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. یعقوب علیہ السلام نے کہا اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے. انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زور آور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بالکل ہی نکمے ہو گئے. بس جب وہ اسے لے کر چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہہ میں پھینک دیں, ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرح وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے. وجاؤہم آباہم عشاء یبقون, اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے. قالو, کہنے لگے ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا, بس اسے بھیڑیا کھا گیا, ہم تو آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے گو کہ ہم بالکل ہی سچے ہوں, اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود کر کر لائے. باپ نے کہا یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنا لی ہے. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, بس صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے. اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا, اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا, کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات ہے یہ تو ایک لڑکا ہے, انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا اور اللہ تعالیٰ اس بات سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے. और उन्होंने इसे बहुत ही हल्की कीमत पर गिनती के चंद दिरहमों पर बेच डाला, और वो यूसुफ के बारे में बहुत ही बेरग़बत थे। रुकू नंबर 12 था, ब्रादराने यूसुफ की साजिश। इसमें मेरा ख्याल है कि पॉइंट्स तो आपके सामने वाजे हैं। एक एक बात, कहानी का यही फायदा होता है कि हर बात सामने होती है। लेकिन आपने देखा कि इस पूरे रुकू में भाइयों की साजिश का जिक्र है, उनके दिल में हसद आता है, फिर बाप को बहका हुआ कहते हैं, और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के कत्ल की कोशिश करते हैं, और फिर याकूब अलैहिस्सलाम के पास आते हैं इजाज़त लेने के लिए, वो इजाज़त नहीं देते तो अपनी हमदर्दियाँ साबित करते हैं, और बिलआख़िर फिर उसके बाद अपनी कोशिश में कामयाब होते हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला, और कुएं में डाल के फिर वो वहाँ से वापस आए। लेकिन उधर से एक काफिला गुजर रहा था, कहते हैं कि मिस्र से एक काफिला आ रहा था, तो काफिले के आगे जैसे कुछ लोग होते हैं जो पानी वगैरह का इंतजाम करते हैं, जगह देखते हैं, उन्होंने जब इस कुएं में डोल डाला तो उसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत से बच्चे थे, वो निकल आए, उसको उनको देख के खुश हो गए। उस दौर में बच्चों को भी बेचते थे लोग, गुलामी का रिवाज था। उन दोनों ने छुपा दिया कि बजाय इसके कि सारे काफिले को पता चल जाए, हम इनको बेच से फायदा लेंगे, तो इसी का जिक्र हुआ। हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अमल की बातें, मैं चाहूंगी कि एक एक करके आप साथ साथ अमल की बातें लिखें। पहली बात तो क्या है कि किस्सों से इबरत लेनी है, बहुत अहम बात है ये, यानी किस्से को सुनते वक्त हमें इबरत लेनी है। दूसरी बात जो हमारे लिए इसमें अमल की है वो क्या है कि भाइयों के किरदार में देखना है हमने, कि उन्होंने ये कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम हमारे बाप को ज्यादा प्यारा है, लिहाजा इसको रास्ते से हटा दो ताकि हमें बाप की मोहब्बत मिल जाए। ये ऐसी गलती है जो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि नफ़रतें देके मोहब्बतें नहीं मिलती। बाज़ दफ़ा मैंने देखा कि शादी होती है कि अमूमन जब लड़की ससुराल में जाती है तो एक ख्याल उसके दिल में डाल दिया जाता है या खुद ही पैदा हो जाता है, और वो क्या है कि अगर तुमने अपने शौहर की मोहब्बत लेनी है तो उसको उसके घर वालों के खिलाफ कर दो, उसकी माँ के खिलाफ कर दो, उसकी बहनों के खिलाफ कर दो, ताकि वो सिर्फ तुम्हारा रहो। और बहुत सारी लड़कियां ना समझी में ये गलती करती हैं, ना शोहर की मोहब्बत मिलती है और घर वालों में भी बदनामी होती है। तो याद रखिए, नफरत देके कभी मोहब्बत नहीं मिलती। किसी को आप इतने साल एक घर में वो रहा, वो पला, उस माँ ने पाला, उन बहनों ने उसके लाड देखे, वो अपनी मोहब्बतों से आपको बसा के लेके आई, और आप उसको काट के क्या लेना चाहती हैं? मैं सोचती हूँ कि बीवी को तो बीवी ही रहना है, वो अपने शोहर की बहन तो नहीं बनना चाहती, माँ तो नहीं बनेगी, बीवी तो वो पहले से है, उसमें तो कोई शरीक नहीं। बहनें तो दो तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, बाज़ हालात में माँ भी एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन बीवी तो एक ही है। तो लिहाजा कभी ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल नहीं करने, बच्चियों को खास तौर पे जब उनकी जवानी की उम्र और शादी के दिन करीब हों तो इस तरह की बातों के लिए जरूर बताने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी चीज जो इसमें पता चली वो क्या थी कि छोटी सी बात थी, बाप की नजरों में उनका ख्याल था कि बेटा ज्यादा प्यारा है, लेकिन उसका हल क्या निकाला कि इसको कत्ल कर दो। इससे अमल की बात क्या निकलती है कि बाज़ मामलात बहुत मामूली होते हैं, लेकिन हम अपनी नासमझी से उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। छोटी सी बात होती है जिस पर शौहर से अनबन हो जाती है, लेकिन हम अपने रिएक्शन से उस बात को बहुत बड़ा तूफान बना लेते हैं, और फिर शौहर के मुंह से गुस्से में कुछ निकलता है तो फिर और उससे परेशान होते हैं। मामलात को उसकी जगह से नहीं बढ़ाना चाहिए। तीसरी चीज जो हमने भाइयों के इस बात से सीखी कि वतकून मिन बाद ही कौमन सालहीन, कि आज इसको मार दो, और ज़ाहिर दिल में गुनाह का एहसास तो आएगा, भाई का कत्ल कोई छोटी बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में जाके नेक हो जाना, यानी तौबा कर लेंगे, नेक होंगे। हमारे अंदर भी बहुत सारे लोग ये तसव्वुर करते हैं कि बड़ी बड़ी नेकियां कर लो, कर लो आज, खुशी का मौका है, बाद में तौबा कर लेना, सदका देना, अभी कर लो बाद में उमरा करने चले जाना, ये नहीं करना। बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं कि किसी तरीके से भी माफ नहीं होते। आपने देखा कि कपड़े पे धब्बे पड़ते हैं ना, अगर कोई औरत हो के चलो पढ़ ले जितने धब्बे पड़ने हैं, बाद में इसको ब्लीच डाल दूंगी, लेकिन सोचिए ब्लीच डालते वक्त कपड़े को तकलीफ होती है ना। इसी तरह जब हम गुनाह कर लेते हैं माफ हो जाएंगे बाद में, लेकिन ब्लीच से भी बड़े बड़े जिंदगी में सदमे, हादसे और तकलीफों से गुजार के अल्लाह ताला माफ कराएगा। कि हम पसंद करेंगे कि एक लम्हे, एक दिन, चंद घंटों की खुशी लेने के लिए फिर अपने आप को कितने महीनों बीमार कराएं, कितनी परेशानियां हमारे ऊपर उतरें। लिहाजा जानते बूझते ये सोच के कि हम बाद में इस गुनाह को बख्शवा लेंगे, वो गुनाह माफ भी नहीं होता। फिर आगे आप देखिए कि इसमें एक चीज जो हमने देखी वो क्या थी कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का ये जुमला कि मैं इसको तुम्हारे साथ नहीं भेजता वरना भेड़िया खा जाएगा, ये जुमला उन्होंने बोला। बेटों ने बाद में उसी जुमले को इस्तेमाल कर लिया। बात समझ रहे हैं? अगर वो ये जुमला ना बोलते तो फिर बच्चों को ये आइडिया नहीं मिलना था। इससे क्या पता चलता है कि कभी गुफ्तगू के अंदर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि जिससे मुखालिफ को कोई नुक्ता मिल जाए। एक और चीज़ हमने इसमें बहुत ही प्यारी सीखी और वो क्या थी कि यूसुफ की कीमत उन लोगों ने ना जानी, उसको कितना हकीर समझा। बाप की शफकत, बाप की मोहब्बत को पाने वाला और इतना खूबसूरत ख्वाब देखने वाला यूसुफ कुएं में डाल दिया गया और उन्होंने उसको क्या समझा, एक बस जैसे चोरी की चीज होती है कि कुछ भी पैसे मिल जाए इससे जान छुड़ा लो। इसी तरह कुछ बच्चियां माँ बाप के घर में बड़ी आंखों की तारा होती हैं, लोगों की मोहब्बतों का मरकज, लेकिन ससुराल वाले उनकी कदर नहीं करते। एक माहौल में आप होते हैं तो मोहब्बतों में पलते हैं, उसी से बदल के दूसरे माहौल में जाते हैं तो लोग आपकी कदर नहीं करते। ये भी इंसानों की एक खता होती है जो लोगों के साथ मामला करने में जाती है। फिर इसमें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का किरदार भी बाप होने के नाते बड़ा खूबसूरत है कि सारी बात समझने के बावजूद बेटों को जतलाया नहीं और सब्र कर लिया, सब्रुन जमील। फिर एक और बात इससे पता चली कि लोगों के जाहिर मामले पर कयास करना चाहिए। बेटों ने कहा हाँ वो मर गया और उसको भेड़िया खा गया, तो यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम ने इसके ऊपर यकीन कर लिया क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन जो है वो जाहिर पे मामला करता है।